थोड़ा दूर, थोड़ा दूर।
सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुपस्थिति चित्स्वभावाय अवाय सर्वभावांतरक्षिदे वंदेतु सर्वसिद्धे धूमचलमनोवयं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मृणमोषित केवली भणिदम। अष्टानिका महापर्व का पांचवा दिन है आज, और प्रातःकालीन स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी भरत क्षेत्र के महान परमागम ऐसे समय सार जी परमागम की माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन अभी अपन लोगों ने इसी महान परमागम पर सुना है। 223 कलश था, और आज गुरुदेव श्री ने 12वीं गाथा को विशेष रूप से याद किया था। मतलब चलते प्रवचन में कोई विशेष गाथा आ जाती है, और 12वीं गाथा को भी इस संदर्भ में, क्योंकि जितना भ्रम 12वीं गाथा के माध्यम से फैला है या फैलाया गया है, गाथा में तो भ्रम की कोई स्थिति है नहीं, तो उसका निराकरण गुरुदेव श्री जितनी बार के प्रवचन हैं, 13वीं बार से लगा करके 19वीं बार के प्रवचन, उनको आप सुनेंगे तो 12वीं गाथा पर काफ़ी विस्तार से गुरुदेव ने बोला है। और उसका कारण यह है कि इस गाथा के माध्यम से लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे 11वीं गाथा में व्यवहार का निषेध किया ना, तो तुरंत ही 12वीं गाथा लेकर के मानो उन्होंने व्यवहार को आदरणीय बताया हो, जबकि वहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं है। 11वीं गाथा के विषयभूत, माने 11वीं गाथा के विषय को हृदयंगम करके जब सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है, तो उस सम्यक दर्शन के साथ में स्वरूपाचरण चारित्र जितना वीतराग चारित्र तो हो जाता है, लेकिन अभी पूर्ण वीतरागता नहीं होती है तो थोड़ा राग भी रहता है। तो बढ़ती हुई वीतरागता और घटता हुआ राग, ये स्थिति होती ज्ञानी की, है ना। हर समय, हर समय गुरुदेव ने इसलिए कहा तेते काले जाने लो प्रयोजन वांछे। ये तेते काले क्यों लिखा, उस काल में क्यों लिखा? अरे सीधा लिख देते ना, व्यवहार है वो जाना हुआ प्रयोजनवान है। तो उसका कारण है कि जैसे प्रथम समय में जो शुद्धि के अंश हैं, दूसरे समय शुद्धि के अंश में वृद्धि होती है और अशुद्धि के अंश घटते हैं, तीसरे समय और शुद्धि के अंश में वृद्धि होती है और अशुद्धि के अंश घटते हैं। तो जिस काल में जो जो व्यवस्था है, शुद्धि की बढ़ती हुई और अशुद्धि के घटते हुए अंशों की, उस काल में वो जाना हुआ प्रयोजनवान है, आदर किया हुआ प्रयोजनवान है, ऐसा जिनागम में कहीं नहीं है, है ना। ये बहुत सारी बातें गुरुदेव श्री के प्रवचनों में बहुत स्पष्टीकरण आता है। अभी अपने यहाँ पर 320 नंबर की गाथा, और उस 320 नंबर की गाथा की टीका में भी अब यहाँ से आज जो आचार्य जयसेन ने उनने कहा कि हम विशेष बात मैंने विशेष चर्चा करेंगे इसके बाद, ये कहा था ना कल, कल क्या बात आई थी, फिर विशेष कहा जाता है ना। ये सारी चर्चा होने के बाद आचार्य देव को और विकल्प आया और वो कहते हैं कि अब और विशेष बात हम यहाँ पे कहते हैं, तो क्या बात विशेष कहते हैं और उस विशेष बात में हमारे लिए क्या खजाना छुपा है, है ना। कहते हैं भाई ये आपके लिए विशेष आइटम है, तो विशेष आइटम का मतलब क्या होता है, हाँ, या आजकल की भाषा में कहें तो कहे ये आपके लिए सरप्राइज है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आचार्य जयसेन अपने को सरप्राइज दे रहे हैं कि हम एक ऐसी अद्भुत बात, हाँ, कि जिस अद्भुत बात पर हमारे गुरुदेव श्री रीझ गए और उन्होंने इस गाथा का मर्म कितने उछलते हुए भावों से खोला है, जितनी बार के उनके इस 320 गाथा के प्रवचन आप सुनोगे, क्या गजब। वैसे तो गुरुदेव तो हर प्रवचन में उनके तो उछलते हुए भाव होते हैं, लेकिन कभी कोई विशेष बात आती है तो उसमें और कोई उछाला अलग प्रकार का होता है, है ना। मैं अभी तीसरी 320 गाथा के प्रवचन सुनता हूँ सुबह उठ के, है ना, तो पता पड़ता है कि देखो कितना यानी मर्म है आचार्यों की वाणी में, तो मर्म है, लेकिन गुरुदेव श्री के बोलने में जो उछाला आता है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे जब एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को आत्मा की बात में, आत्मा की अनुभूति तो है ही ज्ञानी को, तो उस आत्मा की बात करते हुए जब एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को इतना उछाला आता है, तो मुनि भगवंतों की दशा तो कैसी होगी, हैं? वहां तो तीन तीन कसाय चौकड़े का अभाव है। और आज ये चर्चा भी गुरुदेव ने कही कि लोग कहते हैं कि भाई ये मुनि को नहीं मानते हैं, कि बापू मुनि को कौन नहीं माने, परंतु मुनि होना चाहिए ना, है ना। और मुनि की एक परिभाषा देते थे सीधी सीधी, जो अपने निमित्त से बनाया हुआ आहार ग्रहण करे वो द्रव्यलिंगी भी नहीं है, ये सीधा सीधा गुरुदेव मापदंड देते थे। किसी की निंदा आलोचना की बात नहीं, व्यक्तिगत क्यों, क्योंकि अपन ने ऐसा अनंत बार धारण किया है, दूसरों की क्या बात करें अपन, ठीक है। तो अपन लोगों ने भी ऐसा अनंत बार किया है, अभी अपने को अवसर मिला है, तो इस अद्भुत बात को अपने को समझना चाहिए, बहुत गजब की बात है। अब देखो यहाँ पे औपशमिकादि पांच भावों में किस भाव से मोक्ष होता है वह विचारते हैं। आचार्य को विचारना है ना, आचार्य को नहीं पता है इसीलिए उनको विचार करना है, अपने को तो विचार करना ही नहीं, क्यों, कि अपन तो विचारातीत हैं, किसको विचार करना है। अरे आचार्य भगवान हम जैसे मूर्खों को साथ में रख के कहते हैं आओ बेटा अपन विचारते हैं, यह है बात। आचार्य को क्या विचारना है, उनका तो प्रणमन में चल रहा है। जैसे वो 80 नंबर की गाथा है ना प्रवचन सार की, तो 80 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने कहा अब हम मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने का उपाय विचारते हैं। तो आचार्य को मोह की सेना की विजय प्राप्त करने का उपाय विचारना है, क्या उनको मोह की सेना की विजय हो गई है, ले अपने को साथ में रखा। अब ये सोचो तो अपने को साथ में रखा आचार्य देव ने, अपने को इसमें अपना गौरव नहीं आता है? कोई भ्रष्ट नेता आ जावे और पंडाल में भाषण हो और दूर से अपना नाम लेके बोला ए भाई तुम्हें यहीं आओ जो स्टेज ऊपर, और फोटो वोटो खींचे तो फोटो लेके घूमता है फलाने नेताजी के साथ, देखो मेरे को कितनी सभा में से उठा के उन्हें बुलाया, और उस नेता के सारे कारनामे पता हो दुनिया को, फिर भी अपने को कैसा अवभाव आता है। तो ये तो वीतरागी संत, ये तो मोक्ष मार्ग में निरंतर तीव्र गति से बढ़ने वाले संत, सम्य दृष्टि है मोक्ष मार्ग में उसकी गति मंद है, और वीतरागी संत हैं मोक्ष मार्ग में उनकी गति तीव्र है। कि ऐसे संत अगर अपने को यह कहते हैं कि औपशमिक आदि पांच भावों में से किस भाव से मोक्ष होता है वह विचारते हैं, यानी अपने को उनने शामिल किया उसमें कि आओ विचारते हैं अपन, अपने को कितना गौरव आना चाहिए। पहली बात तो सोचो कहां योग में नहीं ऐसा है। अब देखो अब यहां पे अब थोड़ा बहुत विषय बहुत गंभीर है और बहुत समझने का विषय भी है, और इसमें अपन चर्चा करेंगे कि दृष्टि के विषय में हम लोग कहाँ एक एक ऐसी भूल की ओर अपन विचार करेंगे कि कहाँ हम लोग गलती कर जाते हैं, वो मैं चर्चा करूँगा। देखो अभी वहाँ औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक तथा औदयिक, ये चार भाव पर्याय रूप है। क्या कहा? कौन कौन से भाव? औपशमिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, क्षायिक भाव और औदयिक भाव। मतलब क्या? किसे कहा औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक और औदयिक भाव? किसे कहा? आत्मा के जिस भाव में, अर्थात आत्मा के जिस परिणाम में कर्म का उपशम, कर्म का क्षयोपशम, कर्म का क्षय अथवा कर्म का उदय निमित्त हो, उन भावों को क्रम से ये जो चार नाम आए ना, कि ये नाम से बोला जाता है। कि वे चार भाव कैसे हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं वे पर्याय रूप है। पर्याय रूप का मतलब क्या? कि वे होते हैं और अगले समय वे को प्राप्त हो जाते हैं, फिर नया उत्पन्न होता है और अगले समय वे को प्राप्त हो जाता है। कभी आपने सोचा कि इस व्यवस्था को नियंता कौन होगा, इस व्यवस्था का कभी आपने विचार किया? कि एक समय की पर्याय पैदा हो और अगले समय वो पर्याय खत्म हो जाए, अगले समय वो पर्याय का नाश हो जाए और नई पर्याय उसी समय उत्पन्न हो जाए, कभी आपको ऐसा लगा? अपने को ऐसा लगा कि क्यों जी, अगर ये एक समय की पर्याय दो समय रह जाए तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम ये पर्याय को इतना जल्दी भगाना क्यों चाहते हो? तो हमने कहा भाई जब दो समय रह सकती है तो फिर तीन समय क्यों नहीं, तीन समय रहती है तो फिर चार समय क्यों नहीं है? अरे फिर जब चार समय रहती है तो अनादि अनंत यही रहे ना। मर्यादा अगर टूट गई तो फिर कहां जाके रुकेगी वो? इसलिए अगर पर्याय का स्वभाव बदलना है, पर्याय का स्वभाव परिणमन करना है, तो काल का वो छोटे से छोटा हिस्सा कि जिसका फिर दूसरा टुकड़ा नहीं हो, एक समय में उसे बदल ही जाना चाहिए और वो बदलती ही है। कि साहब ये पर्याय तो चली गई लेकिन अगली पर्याय स्व समय में नहीं आई तो उस समय तो गैप हो जाएगा ना। तुम्हें घबराने की, चिंता नहीं करने की आवश्यकता नहीं है, ये पर्याय जाएगी और अगली पर्याय आएगी, आने योग बने, भाव का अभाव होगा, अभाव का भाव होगा, आने योग्य ही आएगी, नहीं आने योग्य कभी नहीं आएगी, है ना। ये एक समय की पर्याय को नियंत्रित और इसकी सुव्यवस्थित व्यवस्था को संचालित करने के लिए आत्मा के अंदर में छह शक्तियां हैं। सभी द्रव्यों में है, कौन कौन सी छह शक्तियां? भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति। यानी हमको जो चिंता है ना कि पर्याय को कौन बदलेगा, अगर पर्याय हम, अरे तुमको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगले समय में वो पर्याय बदल जाएगी, जो पर्याय अभी नहीं है वो अगले समय आ जाएगी, भाव का अभाव हो जाएगा, अभाव का भाव हो जाएगा। हमें ना पर्याय को भेजने का पुरुषार्थ करना है और ना हमें पर्याय को लाने का पुरुषार्थ करना है, पर्याय को स्वसन्मुख करने का पुरुषार्थ करना है। स्वसन्मुखता की बात है यहां तो, स्वसन्मुख होने की। और स्वसन्मुख होने का मतलब क्या? कि पर्याय का स्वरूप जानकर, द्रव्य का स्वरूप जानकर, दोनों के स्वरूप को जानकर, नाशवान पर्याय की उपेक्षा जहां हमने की और द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा की, काम हो गया। तो यहां पे कहते हैं कि ये जो चार भाव है ना, कि ये चार भाव पर्याय रूप है और शुद्ध पारिणामिक भाव कैसा है वो? तो कहते हैं वो द्रव्य रूप है। ठीक है, चार भाव कौन से रूप? के पर्याय रूप, पारणा शुद्ध पारनामिक, ये शब्द का प्रयोग किया, शुद्ध पारनामिक भाव। के अशुद्ध पारनामिक भी होते हैं क्या? कहां होते हैं? उसकी चर्चा अभी आने वाली है। यहां शुद्ध पारनामिक भाव की चर्चा है, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। तो भव्यत्व और अभव्यत्व और अशुद्ध जीवत्व, ये अशुद्ध पारनामिक भाव है और शुद्ध जीवत्व, वो शुद्ध पारनामिक भाव है, वो चर्चा भी आने वाली है। यानी ये समझ लो पांच भावों के कुल भेद होते हैं 53। कितने भेद होते हैं? 53। और 53 भेदों में से 52 भेद दृष्टि का विषय नहीं है, ठीक है? 52 भेद दृष्टि का विषय नहीं है, और 52 में से भी 2 भेद ऐसे हैं जो पारनामिक भाव के हैं, बाकी 4 भेद, 4 भावों के 50 भेद, और 2 भेद पारनामिक के, जिसको अशुद्ध पारनामिक बोला है, और उसका कारण बताया क्यों बोला, वो दृष्टि का विषय नहीं है। बहुत गंभीर है, सामान्य बात नहीं है। दृष्टि के विषय में, दृष्टि का विषय त्रिकाली ध्रुव है ना, तो अब यहां पर पदार्थ को कहेंगे वो द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ, तो द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ में ध्रुव आया कि नहीं आया? आया नहीं आया? उत्पाद वे ध्रुव आया ना, प्रमाण का विषयभूत, प्रमाण का विषयभूत पदार्थ, उसमें उत्पाद वे ध्रुव आया, लेकिन वो ध्रुव दृष्टि का विषय नहीं है। शुद्ध नय का विषयभूत ध्रुव दृष्टि का विषय है। क्यों? क्योंकि प्रमाण में जो ध्रुव है वो उत्पाद वे सापेक्ष है, और शुद्ध नय में जो ध्रुव है वो उत्पाद वे निरपेक्ष है, यद्यपि ध्रुव एक ही है। सामान्य बात है, गजब बात है। ये सब रहस्य गुरुदेव की कृपा से अपने लोगों के सामने उजागर हुए। किसी की दम थी ये बात बताने की? अभी गुरुदेव फरमा रहे थे ना, ये समय दर्शन के नाम पे क्या चलता था हमारे एक गुरुदेव के प्रवचन में आता है, अपने तो नाम सुना उन पंडित जी का, कि जयपुर में एक पंडित इंद्र कुमार जी थे, तो इंद्र कुमार जी कहते थे अरे दिगंबर में जन्मा तो समय दर्शन तो लेके जन्मा ही, अभी क्या करना, अभी चारित्र धारण करो बस। ऐसी ऐसी भ्रांत धारणाएं गुरुदेव के पहले सम्यक दर्शन के संबंध में चलती थी। जन्म कुल में जन्म आए तो समय दर्शन तो लेके जन्मा ही है, ठीक है? अथवा देवशास गुरु की श्रद्धा का नाम समय दर्शन, अथवा सात तत्वों की भेद रूप श्रद्धा का नाम समय दर्शन, अथवा मात्र आत्मा की श्रद्धा का नाम समय दर्शन। गुरुदेव ने कहा अकेली श्रद्धा नहीं, अनुभव पूर्वक की श्रद्धा। यानी ये समझो कि सम्यक दर्शन की विधि की बात तो बहुत अलग है, लेकिन सम्यक दर्शन के विषय की भी जगत को खबर नहीं थी, है ना? और बाबू युगल जी साहब ने बहुत अच्छा एक शब्द लिखा है गुरुदेव के लिए। उन्होंने कहा कि अगर हम इस युग में गुरुदेव श्री को सम्यक दर्शन के विषय के आविष्कर्ता कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और ढूंढ के निकाला उन्होंने जिनवाणी में से, अनुभूति के बल से और आगम के आलोक में सम्यक दर्शन का विषय क्या होता है, ये गुरुदेव ने ढूंढ करके दिया है अपने को। अनंत अनंत उपकारों में से गुरुदेव श्री का सबसे महत्वपूर्ण उपकार अगर हमारे ऊपर है तो वो ये कि उन्होंने हमको सम्यक दर्शन का विषय बताया। हम तो सम्यक दर्शन की माला रटते थे और मिथ्या दर्शन का पोषण करते थे, बात सम्यक दर्शन की करते थे और पोषण मिथ्या दर्शन का करते थे। क्यों? कि देवशास गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन, वो परमार्थ सम्यक दर्शन, तो देवशास गुरु की श्रद्धा वो राग है, और राग को सम्यक दर्शन माना तो मिथ्यात्व का पोषण किया, है ना? और आत्मा की अनुभूति पूर्वक जो श्रद्धा हुई उसके साथ में देवशास गुरु की श्रद्धा का राग होता है, तो उस पर, उस अंदर के सम्यक दर्शन का उपचार करके सम्य देवशास गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहना व्यवहार है, ठीक है? देवशास गुरु की श्रद्धा व्यवहार से सम्यक दर्शन है ये नहीं, उसको सम्यक दर्शन कहना व्यवहार है। हम क्या समझते हैं कि राग है वो व्यवहार से सम्यक दर्शन है, और अरागी परिणाम है ना श्रद्धा का, कि वो निश्चय से सम्यक दर्शन है। सुन लो ध्यान से, राग ना व्यवहार से सम्यक दर्शन है, ना व्यवहार से सम्यक ज्ञान है, ना व्यवहार से सम्यक चारित्र है। राग सम्यक दर्शन भी नहीं, सम्यक ज्ञान भी नहीं, सम्यक चारित्र भी नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रवंत संतों को, धर्मात्माओं को, ज्ञानियों को, उनकी भूमिका के अनुसार प्रशस्त राग होता है, उसको सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र कहना उपचार है, कहना व्यवहार है। व्यवहार से वो सम्यक दर्शन है ऐसा नहीं, राग व्यवहार से चारित्र है ऐसा नहीं, राग को चारित्र कहना व्यवहार है। अंतर करना पड़ेगा थोड़ा, बात समझ में आ रही कि नहीं, है ना? तो वो यहां पे कह रहे हैं, देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, कि चार भाव हैं वे तो पर्याय रूप हैं, और शुद्ध पारनामिक भाव वो कैसा है? तो वो कहते हैं कि वो द्रव्य रूप है। तो इस तरह अब देखो, कोई कहे के देखो साहब ये तो तुमने बिल्कुल पर्याय को ऐसा उड़ा दिया, पर्याय को है ही नहीं ऐसा अस्तित्व कर दिया, कि दोनों का स्वीकार किया ना। क्यों? क्योंकि अगर पर्याय का स्वीकार ही नहीं हो तो फिर गौण करने की बात भी कहां रहती है। पर्याय है, और आज तक हमने पर्याय को ही सर्वस्व माना है, और इसीलिए मिथ्या दर्शन का सेवन किया है ना। है, उसको वस्तु में से नहीं भगाना है, पर्याय वस्तु में से नहीं जाएगी, लेकिन तेरी देखने की दृष्टि पर्याय से पार त्रिकाली ध्रुव को देख लेगी। ठीक है, वो यहां पे चर्चा है कि ये चार भाव पर्याय रूप है और शुद्ध पारनामिक भाव द्रव्य रूप है। वह परस्पर सापेक्ष, परस्पर सापेक्ष माने द्रव्य को पर्याय की अपेक्षा और पर्याय को द्रव्य की अपेक्षा, माने द्रव्य के बिना पर्याय नहीं और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं, ऐसे परस्पर सापेक्ष ऐसा द्रव्य पर्याय द्वय, द्रव्य पर्याय द्वय अर्थात द्रव्य और पर्याय का युगल सो आत्मा पदार्थ है। क्या है ये? कि ऐसा द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा पदार्थ है। ये द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा पदार्थ है ये बताया ना, तो ये बताने का प्रयोजन क्या है कि देखो, ये बताने का प्रयोजन ये है कि जैसे प्रवचन सार की 93 नंबर की गाथा में कहा अथु खलो दव महो, अर्थ माने पदार्थ है वो द्रव्यमय है, द्रव्य गुणात्मक कहे गए हैं, द्रव्य और गुण से पर्याय होती है। तो यहां पर द्रव्य और पर्याय स्वरूप संपूर्ण पदार्थ की व्यवस्था को गाथा के डेढ़ लाइन में समाप्त आचार्य देव ने रखा। और उसका चौथा पद क्या लिखा? पजय मूढ़ा ही पर समया, कि हम तुम्हें द्रव्य और पर्याय का ज्ञान, द्रव्य और पर्याय स्वरूप पदार्थ का ज्ञान इसलिए करा रहे हैं कि पर्याय मूढ़ता छूट जाए। समझा गया? क्या कहा? पर्याय मूढ़ता छुड़ाने की बात कर रहे हैं, पर्याय का ज्ञान नहीं छुड़ाया, पर्याय मूढ़ता छुड़ाई। भाई श्री के वचनामृत यानी स्वानुभूति दर्शन में एक बहुत अच्छा प्रश्न आया कि पर्याय का ज्ञान करने से तो ध्येय में शिथिलता आ जाती है ना। बहुत से लोग ऐसा मानते थे, गुरुदेव के टाइम पर भी था, एक प्रसंग भी बना था, फिर गुरुदेव ने किसी विद्वान को वहां से भेजा भी था, ये सारे प्रसंग हैं अपने हैं। पर्याय है ही नहीं, पर्याय की बात नहीं करो, पर्याय अलोक आकाश, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि पर्याय का ज्ञान करने से नहीं, पर्याय बुद्धि की बात है। पर्याय निषेध काय का है? निषेध है पर्याय बुद्धि का। और हमने क्या निषेध समझ लिया? कि या तो हम पर्याय का ज्ञान ही नहीं करना चाहेंगे, और यदि पर्याय का ज्ञान करेंगे तो दृष्टि के विषय में भी पर्याय को मिलाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि दृष्टि के विषय में हमें पर्याय बिना का द्रव्य, गुरुदेव बोलते थे ना, वो पर्याय बिना का द्रव्य कैसा लगता है पता है? नमक बिना की सब्जी। अरे बेस्वाद हो गया, नमक बिना की सब्जी हो गई, पर्याय बिना का द्रव्य, दृष्टि का विषय पर्याय बिना का द्रव्य, कि वो तो नमक बिना की सब्जी हो गई, बिना नमक की सब्जी हो गई। और हमको ये पता नहीं कि भाई साहब ये जो पर्याय बिना का द्रव्य जिसको दृष्टि का विषय कहा जा रहा है, त्रिकाली ध्रुव जिसको दृष्टि का विषय कहा जा रहा है, ये दृष्टि करने वाली दृष्टि खुद पर्याय है। फिर अंतर क्या है? कि अंतर ये है कि दृष्टि दृष्टि को भूल करके त्रिकाली द्रव्य को अपना विषय करती है, इस हद तक विस्मरण कर देती है कि भूल जाती है मैं पर्याय हूं। और इसके लिए उदाहरण आता है मीरा की अभेद भक्ति। क्या मतलब? कि मीरा कृष्ण की भक्त थी ना, हैं? तो वो कृष्ण की भक्ति कैसे करती थी? मैं कृष्ण की भक्त हूं ऐसा नहीं, मैं कृष्ण हूं ऐसा अनुभव करती थी, और उसका नाम है अभेद भक्ति। इसी तरह ये पर्याय रूपी मीरा त्रिकाली द्रव्य रूपी कृष्ण की कैसी भक्ति करे कि मैं त्रिकाली का अनुभव करती हूं, ऐसा नहीं, बल्कि वो ये बोले कि मैं त्रिकाली हूं, मैं अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता हूं। ये उस पर्याय का स्वर, पर्याय गई नहीं, वस्तु में से पर्याय गई नहीं और पर्याय को पर्याय दिखी नहीं, इसका नाम दृष्टि का विषय दृष्टि में आना। क्या कहा, क्या कहा, वस्तु में से पर्याय गई नहीं, क्योंकि वस्तु में से पर्याय चली जाए तो पर्याय बिना की वस्तु तो गधे का सींग है, तो वस्तु में से पर्याय जाएगी नहीं और पर्याय को पर्याय नजर आएगी नहीं। पर्याय को पर्याय नजर आवे तो दृष्टि का विषय नहीं बनेगा, और वस्तु में से पर्याय चली जाए तो दृष्टि कौन करेगा। समझा गया, पॉइंट समझ लेना, एक एक पॉइंट बहुत मार्मिक है ये, है ना। हाँ, ये सब है बातें। देखो क्या कहते हैं यहां पे, कि उसका युगल सो आत्म पदार्थ है। किसका युगल, कि द्रव्य और पर्याय, द्रव्य पर्याय द्वय, माने द्रव्य और पर्याय का युगल, वो आत्मा नाम का पदार्थ है। तो पहले आचार्य देव ने सबसे पहले क्या की, कि सबसे पहले पदार्थ की स्थापना की। पदार्थ कैसा होता है, अपन लोग भी भगवान की पूजा करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, हैं, अत्र टिष्ट टिष्ट ठट स्थापनम इति आवानम अति सन मम सन्नीतो करणम, बोलते कि नहीं बोलते। मैंने पहले भगवान की स्थापना तो करो, जब स्थापना करोगे तो उसके बाद जल चंदन से लेके अर्घ तक की पूजा होगी, और भगवान की स्थापना ही नहीं हुए तो, माने पूजा के पहले स्थापना जरूरी, ठीक है। तो ऐसे यहां पे कहते हैं कि हमको सम्यक दर्शन का विषयभूत आत्मा चाहिए ना, हमको आत्मा की बात करनी है ना, तो पहले द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ को ज्ञान में स्वीकार कराया, कि पहले द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ है। इसका मतलब क्या, कि अपनी मर्यादा, अपनी सत्ता, अपना अस्तित्व, अपनी हयाति, अपनी मौजूदगी, अपनी विद्यमानता, अपने द्रव्य गुण और पर्याय के बाहर है ही नहीं। क्या मतलब, इसका मतलब ये कि पहले तू प्रमाण में आ जा, प्रमाण में आ जा, अपनी मर्यादा में आ जा। अभी तक हम क्या करते हैं, अपनी मर्यादा के बाहर के पदार्थों को भी आत्मा मानते हैं, शरीर को आत्मा मानते हैं, कर्म को आत्मा मानते हैं, संयोग को आत्मा मानते हैं, पुण्य पाप को आत्मा, ये सब मानते कि नहीं मानते, प्रमाण के बाहर लौट रहे हैं अभी। तो आचार्य देव ने पहला हमारा काम किया कि पहले तुम उस प्रमाण की परिधि में आ जाओ, जो प्रमाण की परिधि के बाहर तुम्हारा व्यवसाय चलता है, वहां आत्मा वहां आत्मा, तो वहां से हटा करके हमें प्रमाण की परिधि में लाए, और प्रमाण की परिधि में ला करके फिर ये कहा कि यहां आने पर यहां तुम्हें तुम्हारे प्रयोजन की विषय वस्तु मिलेगी, लेकिन सारी चीज वो प्रयोजन की बात नहीं होती है ना। फिर यहां आकर के द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ पर खड़ा करा करके, द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ का ज्ञान में स्वीकार करा करके, द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ सामने रख करके कहते अब तुम प्रयोग करो यहां पे, कि जब द्रव्य और पर्याय द्वय स्वरूप पदार्थ है तो दो स्वरूप क्यों है। अगर दोनों स्वरूपों में स्वरूप विपरीतता नहीं होती तो फिर दो होने की जरूरत क्या है, हैं? यानी या तो दोनों त्रिकाली हों तो दो होने की जरूरत क्या है, और दोनों क्षणिक हों तो दोनों क्षणिकताओं की दो होने की जरूरत क्या है। यानी अगर इनका द्रव्य पर्याय द्वय ऐसा अगर इस पदार्थ का स्वरूप है तो इसका मतलब ये कि द्रव्य और पर्याय के अंदर स्वरूप विपरीतता है, एक दूसरे का स्वरूप एक दूसरे से मेल नहीं खाता, तब ना विरोध, तब ना वो दो दो धर्म हुए, दो पदार्थ, दो मन, दो उसके अंश हुए। बहुत बातें हैं, अब समझो कि दो, अब क्या विचार करना है यहां पर कि स्वरूप विपरीतता क्या, कि देखो भाई ये जो द्रव्य अंश है पदार्थ का, पदा ए वस्तु क्या है, द्रव्य पर्याय स्वरूप संपूर्ण पदार्थ। अब इस पदार्थ के दो अंश कौन कौन से दो अंश, कि द्रव्य और पर्याय। द्रव्य और पर्याय अंश अगर दो हैं तो इन दो अंशों में स्वरूप विपरीतता होनी चाहिए। अगर स्वरूप विपरीतता नहीं हो तो दो नहीं हो सकते। क्या स्वरूप विपरीतता है, कि द्रव्य पदार्थ का एक अंश जिसे कि द्रव्य कहते हैं वो नित्य कायम टिकता अंश है, और द्रव्य का वो अंश कि जिसे यहां पर पर्याय कहा गया कि उसका स्वभाव ही निरंतर परिणमन करना है, माने उसमें एक समय का भी ठहराव नहीं है, एक समय बाद बदली जाएगी, और ये ऐसा है कि जो कभी बदलता नहीं। तो जब एक पदार्थ के दो अंश और दो अंशों में स्वरूप विपरीतता, एक नित्य कायम रहने वाला अंश और एक निरंतर बदलने वाला अंश, जब दोनों में इस तरह की स्वरूप विपरीतता है कि एक कायम टिकता है और एक निरंतर बदलता है, और कायम टिकना और निरंतर बदलना उसमें भी थोड़ा समझो इस बात को भी, कि कायम टिकना माने उस कायम टिकने को बोलते हैं अन्वय। क्या बोलते हैं उसको, अन्वय, प्रवचन सार में आए, उसको बोलते हैं अन्वय। और जो निरंतर बदलने वाला अंश है उसको बोलते हैं व्यतिरेक। क्या बोला, अन्वय और व्यतिरेक। और इन गुणों की क्या स्थिति भी पता है, कि अन्वय के विशेषण है, ठीक, अभी चर्चा करते हैं उसकी भी। ये अन्वय के विशेषण है। अब अन्वय माने क्या, अभी शास्त्रीय शब्द है तो अन्वय 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 अन्वय, हम तो समझे नहीं। अन्वय का मतलब होता है वही का वही, क्या कहा, एक वही का वही। और व्यतिरेक माने वैसा का वैसा भले हो, कदाचित शुद्ध पर्याय है, सिद्ध भगवान की पर्याय केवल ज्ञान, तो वैसा का वैसा भले हो लेकिन विकारी पर्याय से लेकर पूर्ण शुद्ध निर्मल पर्याय, उनमें कोई पर्याय वैसी की वैसी भले ही हो लेकिन वह की वह नहीं हो सकती। अंतर क्या है, वह की वह और वैसी की वैसी, कि बदलते हुए भी वैसी की वैसी हो सकती है लेकिन बदलती है, और एक होता है वही की वही। हम तो समझे नहीं साहब, कि देखो अपने घर में एक बच्चा है और बहुत लाड प्यार से अपन उसको पालते पोसते हैं, हर जिद उसकी पूरी करते हैं। तो क्या करा, हमने 20-25 हजार का एक खिलौना ला करके इस बच्चे को दे दिया, खेल बेटा। और उसी परिवार में हमारे कोई रिश्तेदार का या कोई बच्चा अपने आया, वो बच्चे ने खिलौना देखा, वो बच्चा भी खिलौने से खेलने लगा, गलती से वो खिलौना टूट गया। अब जिसका खिलौना था वो बच्चा रोने लगा, तो पिताजी ने कहा बेटा रोता काय को है, अपने घर में पैसे की कमी है, बहुत पैसा है, और तेरे से ज्यादा कीमती पैसा थोड़ी है, तू घबरा मत, मैं अभी तेरे को इसी ब्रांड का, इसी कलर का ऐसा खिलौना ला करके दूंगा। और लड़का क्या कहता है, मुझे वही का वही चाहिए। अंतर समझ में आ गया, अन्वय और व्यतिरेक का, कि वैसा का वैसा लाके दूंगा। लड़का कहता है वही का वही चाहिए। मैंने कहा सम्यक दर्शन का पात्र तो ये लड़का है, ये पिताजी नहीं है, है? कि वैसा का वैसा, लड़का के पिताजी कहते हैं वैसा का वैसा, वही डिजाइन वही कलर वही कंपनी वही ब्रांड उतने ही पैसे का। लड़का कहता है नहीं चाहिए, मुझे वही का वही चाहिए। अब वही का वही तो पिताजी कहां से लाके दे, ठीक है। तो वही का वही माने द्रव्य, और पर्याय में वैसा का वैसा भी नहीं होता लेकिन कदाचित हो, एक रूपता भी हो पर्याय में तो भी वो वही की वही पर्याय नहीं है, वो वैसी की वैसी पर्याय है। और इसका उदाहरण है कि जो राजा ऋषभ देव नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, क्या हुआ था मुझे बताने की, आपको पूरा किस्सा याद है ना, कि नीलांजना की मृत्यु हो गई और उसी समय इंद्र ने नीलांजना जैसी ही एक समय का भी गेप पड़े बिना वैसी की वैसी देवी उतार दी, है ना। तो सारे सभाजन क्या मानते थे, वही की वही है, और ऋषभ देव जी कह रहे थे वैसी की वैसी है, वैसी की वैसी है माने वह की वह नहीं है, तो वैसी की वैसी है माने उसकी क्षण भंगुरता देख करके, पर्याय की क्षण भंगुरता देख करके, पर्याय के प्रति उदासीन भाव का होना, और द्रव्य की नित्यता देख करके द्रव्य के प्रति अनुदासीन भाव का होना, मैंने द्रव्य के प्रति उदासीनता का नहीं होना, और पर्याय की क्षण भंगुरता देख करके पर्याय के प्रति उदासीन हो जाना, द्वेष नहीं करना। क्यों नहीं द्वेष करना, क्यों, क्योंकि क्षण भंगुरता पर्याय का स्वभाव है, स्वभाव है ना, तो स्वभाव है तो वो तो उसका स्वरूप ही है, वो पर्याय बनी ही क्षण भंगुरता से है, क्षण भंगुरता ही उसका स्वरूप है, तो उसका स्वरूप है और वो स्वरूप पर्याय का सौंदर्य है, क्योंकि अगर पर्याय क्षण भंगुर नहीं होती तो कोई कह दिए क्षण भंगुर पर्याय होती क्यों है। मैंने कहा अगर क्षण भंगुर पर्याय नहीं होती ना तो हमारे मिथ्यात्व का अभाव होकर के संवेदन नहीं होता। ये पर्याय की क्षणभंगुरता का ही कमाल है कि हम मिथ्यात्व का अभाव करके समय दर्शन प्राप्त कर लेंगे, हम दुख का अभाव करके समय दर्शन प्राप्त कर लेंगे, हम संसार का अभाव करके क्या प्राप्त कर लेंगे कि मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। ये पर्याय की क्षणभंगुरता का ही कमाल है, और पर्याय क्षणभंगुर हो और यदि द्रव्य भी उसी के जैसा ही हो तो फिर भाई मतलब क्या रहा, किसके सहारे तुम अपना काम करोगे, है ना। पर्याय बदलनी ही चाहिए, और पर्याय का विषय भूत द्रव्य नहीं बदलना चाहिए, वो नहीं बदलेगा तो सदा उपलब्ध रहेगा, नहीं तो पता लगा कि पर्याय ने सोचा कि चलो अनादि काल से अपन आत्मा का आश्रय नहीं लिया था, द्रव्य का आश्रय नहीं लिया था, अभी हम द्रव्य का आश्रय लेने, अब द्रव्य का आश्रय करना, और वो द्रव्य का आश्रय करने के लिए द्रव्य की ओर जाती है तो पता लगा द्रव्य छुट्टी पे गया है, मतलब द्रव्य विद्यमान नहीं है तो गया काम से। द्रव्य सदैव विद्यमान है, उसकी सदैव विद्यमानता यह है उसकी नित्यता, यह है उसका वही का वही पना, और पर्याय प्रति क्षण बदलने वाली है ना, तो वो बदलती है, इसलिए उसके पास गुंजाइश है कि अशुद्धता का अभाव करके शुद्धता प्रकट करे, दुख का अभाव करके सुख प्रकट करे, ये इसलिए उसके पास अवकाश है क्योंकि वो बदलती है, और द्रव्य बदलता नहीं, और ऐसा द्रव्य पर्याय स्वरूप पूरा पदार्थ है। अब ऐसा द्रव्य पर्याय स्वरूप पूरा पदार्थ, अब इस पूरे पदार्थ को स्वीकार करके लाभ क्या आना चाहिए, कि पर्याय की क्षण भंगुरता का स्वरूप देखकर पर्याय के प्रति उदासीनता आ जावे, पर्याय बुद्धि छूट जावे, द्रव्य स्वभाव की नित्यता को देखकर नित्य वस्तु के प्रति अपेक्षा भाव हो जावे, यही एकमात्र होने योग्य करने योग्य कार्य है। और ये नहीं करें, है ना, अब पर्याय की अनित्यता को देख करके रोवे, रोता काहे को है, अगर ये पर्याय नहीं बदलेगी तो तेरा रुदन कैसे मिटेगा, तेरा संसार चक्र कैसे मिटेगा, है ना। तो ये पर्याय की अनित्यता भी हमारे ही फायदे में है। देखो अब यहां पे देखो, अभी चर्चा इसकी बहुत और भी अभी मैं करूंगा विस्तार से, अभी देखो यहां प्रथम तो जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व ऐसे तीन प्रकार के पारनामिक भावों में, पारनामिक भाव के कितने भेद हुए, तीन, कौन कौन से तीन भेद, के जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व। भव्यत्व माने क्या और अभव्यत्व माने क्या, भव्यत्व पारनामिक भाव माने जे जीव में मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की योग्यता, मोक्ष होने की योग्यता जिस जीव में पाई जाती हो उसको भव्यत्व पारनामिक भाव वाला जीव बोलते हैं, और जिस जीव में अनादि अनंत काल में कभी भी जिस जीव में मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता नहीं है उसको बोलते हैं अभव्यत्व पारनामिक भाव। अब ये इसको पारनामिक क्यों बोला कि जीव को मोक्ष, ये जीव मोक्ष जाने योग्य है और ये जीव कभी मोक्ष जाने योग्य नहीं है, इसमें किसी कर्म की अपेक्षा नहीं है। माने इस जीव के ऐसा कर्म का उदय है इसलिए मोक्ष नहीं जाएगा, और इसको ऐसा कर्म नहीं है इसलिए कभी मोक्ष चला जाएगा, कि ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। माने वो जीव का भव्य होना और जीव का अभव्य होना वो जीव की स्वयं की योग्यतागत व्यवस्था है, किसी की अपेक्षा उसमें नहीं। और जिसमें किसी की अपेक्षा नहीं होवे उसको पारनामिक भाव बोलते हैं। अब जीवत्व पारनामिक, अब जीवत्व पारनामिक के दो भेद किए उन्होंने, कौन कौन से दो भेद, तो उन्होंने कहा जो 10 प्राण के धारण रूप जो योग्यता है, 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, इनको धारण करने रूप आत्मा की परिणाम की योग्यता, उसको बोलते हैं अशुद्ध जीवत्व। और 5 इंद्रियां संयोग रूप में मिलना, मन वन वचन वन काय बल आयु का और श्वासोच्छ्वास का शरीर, ये तो पौद्गलिक है, इससे कोई लेना देना नहीं। अशुद्ध जीवत्व क्योंकि मैंने अशुद्ध जीवत्व और जीवत्व, मैंने जीवत्व पारनामिक भाव के उन्होंने दो भेद करके अशुद्ध पारनामिक को अलग कर दिया और क्या रखा, शुद्ध पारनामिक। वो देखो यहां पे कह रहे हैं, बहुत गजब का है, क्या कह रहे हैं यहां पे, ऐसे तीन प्रकार के पारनामिक भावों में अशुद्ध जीवत्व ऐसा जो, सॉरी शुद्ध जीवत्व ऐसा जो शक्ति लक्षण पारनामिक पना, क्या बोला, शुद्ध जीवत्व ऐसा जो, शुद्ध जीवत्व माने ज्ञान दर्शन की योग्यता, वो सारा शुद्ध जीवपना चैतन्यता जिसने धारण किया है, जीवत्वपना जिसने धारण किया है, कि ऐसा जो पारनामिक भाव वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रित होने से, कि वो किस नये का विषय है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नये का विषय है, मतलब क्या कि शुद्ध पारनामिक भाव वो शुद्ध नयाश्रित होने से निरावरण और शुद्ध पारनामिक भाव ऐसी संज्ञा वाला जानना। निरावरण का मतलब क्या, कि जिसमें किसी आवरण का होना नहीं है। नियम सार में एक शब्द का प्रयोग बहुत आता है, सकल निरावरण नित्य शुद्ध। तो मतलब निरावरण का मतलब क्या, कि देखो छायिक भाव को भी निरावरण कहते हैं, छायिक भाव है ना, तो छायिक भाव को भी निरावरण कहते हैं और पारनामिक भाव को भी निरावरण कहते हैं। तो दोनों के निरावरण पने में अंतर क्या है, कि दोनों के निरावरण पने में अंतर यह है कि छायिक भाव रूप जो निरावरणता है वो आवरण था उसका अभाव करके निरावरण हुआ, आवरण के अभाव से प्रकट होने वाली निरावरणता वो छायिक भाव है, और जिसमें आवरण था ही नहीं, और जिसमें जब आवरण है ही नहीं तो जिसमें से आवरण के अभाव की भी कोई गुंजाइश नहीं। क्यों, क्योंकि पारनामिक भाव को कोई आवरण नहीं है, कोई कर्म का उदय नहीं है, कोई कर्म का क्षोभसम नहीं है, कोई कर्म का क्षय नहीं है, कोई कर्म का उपशम नहीं है, कोई आवरण नहीं। और जब आवरण नहीं तो जिसमें से आवरण का अभाव होना नहीं है, क्या मतलब, जो सदा काल निरावरण है, आवरण का अभाव करके निरावरण होना, ऐसा जिसमें नहीं है, लेकिन जिसमें आवरण था ही नहीं, आवरण है ही नहीं और आवरण कभी होने वाला नहीं है, उसको बोलते हैं निरावरण। कैसा है, द्रव्याशित होने से निरावरण, और फिर क्या लिया, शुद्ध पारिनामिक भाव ऐसी संज्ञा वाला जानना। शुद्ध पारिनामिक क्यों कहा, क्योंकि भव्यत्व पारिनामिक, अभव्यत्व पारिनामिक और अशुद्ध जीवत्व नाम का जो पारिनामिक है, उन तीनों को अशुद्ध पारिनामिक कहते हैं। ठीक है, और इसको शुद्ध जीवत्व रूप जो पारनामिक भाव है, कहते इसको क्या बोलते हैं कि इसको शुद्ध जीवत्व पारनामिक भाव बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं शुद्ध पारनामिक भाव? तो दो उत्तर आगे देने वाले आचार्य, दो उत्तर देंगे आचार्य इसके कि ये शुद्ध पारनामिक भाव है ना, तो ये शुद्ध ऐसा क्यों, अशुद्ध क्यों नहीं, पारनामिक भाव। तो उन्होंने कहा कि सभी संसारियों को तो अशुद्ध पारनामिक भाव का शक्ति रूप से अशुद्ध पारनामिक भाव का अभाव है, मैंने शुद्ध पारनामिक भाव शक्ति रूप शुद्ध पारनामिक भाव में अशुद्ध पारनामिक भाव का अभाव है, और सिद्धों को तो पर्याय में भी उसका अभाव है, इसलिए वो अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि अशुद्धता जाती है, मलिनता जाती है, शुद्धता और निर्मलता मिटती नहीं है। वो यहां पे कहने देखो कि ऐसी संज्ञा वाला जानना, अब वो जो पारनामिक भाव है, कौन सा पारनामिक भाव? शुद्ध, देखो फिर से पढ़ लो, मैंने ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रित होने से निरावरण और शुद्ध पारनामिक भाव ऐसी संज्ञा वाला जानना, ऐसा जिस पारनामिक भाव को कहा वह तो बंध मोक्ष पर्याय परिणति रहित है। पर्याय और परिणति में क्या अंतर है? कि पूर्व पर्याय का बदल करके उत्तर पर्याय रूप होना, तो पर्याय का होना वो तो कहलाता है पर्याय, और पूर्व का बदलना और नई का उत्पन्न होना, ये जो क्रिया हुई इसको बोलते हैं परिणति। कर्ता परिणामी द्रव, कर्म रूप परिणाम, क्रिया पर्याय की फेरनी, वस्तु एक त्रय नाम। ये जो फेरनी, ये जो फिरा हुआ ना, पूर्व पर्याय का वे होकर के नई पर्याय उत्पन्न हुई, ये फेरनी हुई पर्याय की, इस पर्याय की फेरनी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? परिणति। और परिणाम मतलब ये परिणति होकर के जो पर्याय होती है, पूर्व पर्याय को बदल करके जो नई पर्याय होती है, वे होकर के जो उत्पाद होता है, तो वो बंध मोक्ष की, क्या शब्द का प्रयोग किया? कि वह तो बंध मोक्ष। क्यों? क्योंकि बंध का कर्ता होगा तो उसे मोक्ष का कर्ता होना पड़ेगा, जो बंध का कर्ता नहीं कहते वो मोक्ष का भी कर्ता नहीं, जो बंधा नहीं वो मोक्ष भी नहीं होता। ठीक है कि नहीं? मोक्ष किसे? मोक्ष माने क्या होता है? छूटना। तो एक आदमी ने अदालत में तलाक की अर्जी दी, तो अदालत ने पहले प्रश्न पूछा कि तुम्हारी शादी कब हुई थी? तो वो कहता है शादी तो हुई नहीं। तो शादी हुई नहीं तो तलाक किसका? नहीं आई बात समझ में? बंध के साथ बंधे हो तो बंध से छूटने की बात करो, जब बंधे ही नहीं तो छूटने की बात क्यों? जो बंधा है वो छूटेगा, लेकिन जो बंधा नहीं वो कब छूटेगा? तो कभी नहीं छूटेगा। तो वो जो पारनामिक भाव है, कि वो पारनामिक भाव, वो क्या लिखा है यहां पर कि ऐसी संज्ञा वह तो बंध मोक्ष पर्याय परिणति से रहित है, परंतु जो दस प्राण रूप जीवत्व, ठीक, और भव्यत्व अभव्यत्व द्वय, माने भव्यपना और अभव्यपना दो, ये वे पर्याय नया, वे पर्यायार्थिक नयाश्रित होने से अशुद्ध पारिणामिक भाव संज्ञा वाले हैं। क्यों? कि वे क्या हैं? वे क्या हैं? कौन कौन से लेना? कि दस प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व अभव्यत्व द्वय, माने ये तीनों प्रकार, भव्यत्व अभव्यत्व द्वय और दस प्राण रूप जीवत्व, कि वे पर्यायार्थिक नयाश्रित होने से पर्याय ही है प्रयोजन जिसका, ऐसे नए के आश्रित होने से वो क्या होता है? अशुद्ध पारनामिक भाव कहलाते हैं। अब अशुद्ध पारनामिक भाव क्यों कहलाते हैं? आचार्य भगवान ने तो कह दिया अशुद्ध पारनामिक भाव कहलाते हैं। कह साहब ये तो गजब हो गया है, ये तो गजब हो गया कि पर्यायार्थिक नए नए नयाश्रित होने मात्र से तुम उसे अशुद्ध कह दोगे, तो उसका कारण क्या है? कि प्रश्न किया शिष्य ने, अशुद्ध क्यों? कुछ आपकी तो मोनोपोली चल रही है, जो हमारे द्रव्य के आशित हो वो शुद्ध, जो पर्याय के आशित हो वो अशुद्ध, ऐसा क्यों भाई? तो आचार्य देव ने बहुत गंभीर बहुत बढ़िया उत्तर दिया। वो आचार्य देव उत्तर देते हुए क्या कहते हैं देखो जरा, वो ये कहते हैं कि भाई संसारियों को शुद्ध नय से, संसारियों को शुद्ध नय से माने उनके त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि से देखें, शुद्ध नहीं माने, शुद्ध नहीं माने जो त्रिकाली स्वभाव को विषय करता है, तो उस त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि से देखें तो संसारियों को शुद्ध नहीं से और सिद्धों को तो सर्वथा ही 10 प्राण रूप जीवत्व का तथा भव्यत्व अभव्यत्व द्वय का अभाव होने से। क्या मतलब? कि अगर वो शुद्ध होता तो जिनको शुद्धता की पूर्ण प्रकटता हो गई है ऐसे सिद्धों को वो क्यों नहीं है? कि देखो संसारी जीवों को तो शुद्ध नय की अपेक्षा से नहीं है, यानी संसारी जीवों की तो पर्याय रूप वो भाव है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं मैंने शुद्ध द्रव्य की दृष्टि से शुद्ध द्रव्य में वो भाव नहीं है। और सिद्धों को तो क्या हो गया कि सिद्धों को द्रव्य में तो है ही नहीं लेकिन पर्याय में भी नहीं है। सर्वथा शब्द क्यों लिया? कि द्रव्य में भी नहीं और द्रव्य में तो संसारी के भी नहीं, संसारी के भी द्रव्य में नहीं पर्याय में है, और सिद्ध को द्रव्य में नहीं है और पर्याय में भी नहीं है। सिद्ध भव्य हैं कि अभव्य हैं? सिद्ध भगवान के कितनी इंद्रियां, सिद्ध भगवान को कितना बल, सिद्ध भगवान की कितनी आयु? आयु उसे कहते हैं कि जिसके बाद फिर मरना पड़े तब आयु कहलाती है। सिद्ध भगवान का सादी अनंत काल का जीवन है लेकिन सादी अनंत काल सिद्ध भगवान की आयु नहीं है। क्यों? क्यों उसके बाद उन्हें नया जन्म नहीं लेना है। नया जन्म लेना हो तो वर्तमान में वर्तती स्थिति को हम आयु संज्ञा देंगे, और अगर नया जन्म नहीं लेना हो तो उसे हम बोलेंगे निर्माण, निर्वाण है, मोक्ष है, अनंत काल तक रहेंगे, उसको आयु संज्ञा नहीं देंगे। और 10 प्राण की योग्यता के सिद्ध भगवान को कितनी इंद्रियां? अरे अरियंत भगवान पे तो द्रव्य इंद्रियों का उपचार भी आता है, भले इंद्रियों का व्यापार नहीं है, आंख से नहीं देखते, कान से नहीं सुनते, लेकिन शरीर के चिन्ह विशेष इंद्रियां होने से अरियंत भगवान को तो द्रव्य इंद्रियों का उपचार भी आता है, लेकिन सिद्ध भगवान को तो द्रव्य इंद्रियां भाव इंद्रियों का अब उपचार भी नहीं आता। तो अगर ये शुद्ध होता माने शुद्ध सिद्ध परमात्मा के ये नहीं है, एक बात द्रव्य में नहीं है और पर्याय में नहीं है, और संसारी जीवों की एक समय की पर्याय में होने पर भी अथवा पर्यायाश्रित होने पर भी उनके द्रव्य स्वभाव में ये नहीं है, इसलिए आचार्य कहते हैं हम इनको शुद्ध स्वभाव की दृष्टि से इनको हम अशुद्ध कहते हैं। क्योंकि अपने को लगे ना अटपटा तो थोड़ा लगे कि पारनामिक भाव भी कह रहे हो और अशुद्ध भी कह रहे हो, कि पारनामिक भाव और अशुद्ध दोनों बातें एक साथ गले हाजिर गले नहीं उतरती अपनी, लेकिन कि भाई वो पारनामिक भाव में ही ऐसी विशेषता पड़ी हुई है, द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ है ना, तो वो जो व्यवस्था है ना पर्याय की, वो सारी व्यवस्था यही है पारनामिक भाव। तो ये यहां पे कह रहे हैं कि उसमें जीवत्व भव्यत्व तथा अव्यत्व द्वय का अभाव होने से वो क्या है? अशुद्ध पारनामिक। प्रश्न क्या किया था? अशुद्ध कैसे कह रहे हो? पारनामिक भाव और अशुद्ध, और अशुद्ध है तो पारनामिक क्यों और पारनामिक है तो अशुद्ध क्यों? कि अशुद्ध तो इसलिए कि संसारी जीवों में, फिर से दोहराता हूं, संसारी जीवों के द्रव्य स्वभाव में नहीं है और सिद्धों को तो पर्याय में भी नहीं है, इसलिए तो वो अशुद्ध है क्योंकि शुद्ध में से निकल गया। जिनकी शुद्ध पर्याय प्रकट हुई और उसमें से वो निकल गया, द्रव्य स्वभाव में तो है ही नहीं और पर्याय में भी था, तो पर्याय में भी जो शुद्धता की पूर्णता हुई तो वो निकल गया। निकल गया माने वो अशुद्ध था तो निकल गया। भव्यत्व क्यों है? कि भव्यत्व इसलिए है कि भले ही वो अशुद्ध है लेकिन उस अशुद्धता की माने 10 प्राण रूप धारण की योग्यता, मोक्ष जाने की योग्यता, मोक्ष नहीं जाने की योग्यता, ये कोई कर्म के अधीन व्यवस्था नहीं है, ये कर्माश्रित भाव नहीं है, ये कर्म के कारण से ये जीव भव्य है और कर्म के अभाव के कारण से या अमुक कर्म इसके नहीं है इसलिए ये अभव्य है, ऐसा नहीं है। भव्य और अभव्य सुनना, भव्य और अभव्य दोनों को ही सभी बंधने योग्य प्रकृतियों का बंध होता है, उसमें केवल ज्ञान अभव्य को कभी नहीं होगा, मन पर्याय ज्ञान अभव्य को कभी नहीं होगा, लेकिन केवल ज्ञानावरणी और मन पर्याय ज्ञानावरणी कर्म है वहां पर। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कि वो कर्म है वो नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन अंतर क्या है? कि वो अंतर इतना है कि वहां सर्वथा और पर्याय में भी नहीं है और सिद्ध को स्वभाव में नहीं है, इसलिए तो इनको कहा अशुद्ध। और चूंकि इनके होने में किसी कर्म के उदय उपशम क्षय क्षोभशम की अपेक्षा लागू नहीं पड़ती, इसके लिए इन भावों को मन जीवत्व अशुद्ध जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व द्वय इन तीनों प्रकार के भावों को आचार्य देव ने पारिणामिक भाव कहा। इसलिए पारनामिक शब्द सुन करके अपने को ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसा पारनामिक कह रहे हो तो कम से कम अशुद्ध तो मत कहो। और सुनना कि जब इनको अशुद्ध पारनामिक कहा, मैंने ये जो इनको अशुद्ध पारनामिक कहा ना, तब त्रिकाली पारनामिक को परम पारनामिक अथवा शुद्ध पारनामिक अथवा सहज पारनामिक, तीन शब्दों का प्रयोग आता है। यहां शुद्ध पारनामिक भाव की बात की है, नियम सार में परम पारनामिक भाव भी आएगा, इसमें भी आएगा, और एक और शब्द आता है उसमें सहज पारिणामिक भाव। सहज माने कि जिसमें कर्म के उदय उपशम की कोई अपेक्षा नहीं, ये तो सहज है, ठीक है। ऐसी एक व्यवस्था द्रव्य और पर्याय स्वरूप पदार्थ की है, तो द्रव्य और पर्याय स्वरूप पदार्थ का ज्ञान में स्वीकार करके अब हम अपने प्रयोजन के लिए उस द्रव्य और पर्याय स्वरूप पदार्थ को कैसे समझें कि हमारे मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सफल हो जाए, है ना। कल अपन इसकी चर्चा करेंगे विस्तार के साथ में, अभी सवनों का अपना समय हो गया है।